नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से कहा, परीक्षा की अपनी तैयारी पर पूर्ण भरोसा रखें। शिक्षकों से प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की गति के प्रति संवेदनशील रहने को कहा। दिल्ली जल बोर्ड ने जनकपुरी घटना की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा, राजधानी में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या को लेकर फैलाया जा रहा दुष्प्रचार पैसे लेकर किया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिव्यांग खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और फरीदाबाद में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पूरे उत्साह और जोश के साथ जारी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। आज जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने छात्रों को अपने स्वयं के अनूठे शिक्षण तरीकों पर भरोसा रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक अलग शैली होती है और उन्हें अपनी तैयारी के तरीके पर पूरा विश्वास रखना चाहिए।
पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा, लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो।
श्री मोदी ने कहा कि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब मार्गदर्शन को आत्मविश्वास के साथ जोड़ा जाता है।
स्किल में भी दो प्रकार के स्किल है, एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है तो उसका महत्व कम नहीं है। लाइफ स्किल उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है इसमें लगातार नया करते जाना। शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थियों के सीखने की गति के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अंतिम लक्ष्य केवल अंक नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण विकास होना चाहिए।
जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है और हम शिक्षा सही करते हैं गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं, तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का लाइव प्रसारण नानकपुरा स्थित सीएम श्री स्कूल के विद्यार्थियों के साथ देखा। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनके मन में परीक्षा के डर को आत्मविश्वास में बदलने का संदेश दिया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने छात्रों से तुलना और दबाव से दूर रहकर अपनी क्षमता पर भरोसा रखने का आह्वान किया तथा दिल्ली सरकार की ओर से सभी को सफलता की शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली जल बोर्ड ने जनकपुरी घटना की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट साइट पर तैनात कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इश्यू किया था, सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था जहाँ पर भी काम हो रहे हैं वो वहाँ पर जाके खुद उसको चेक करें।
श्री सिंह ने बताया कि समिति को दुर्घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, साइनेज और यातायात प्रबंधन की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि समिति सभी सुरक्षा मानदंडों के पालन की जांच करेगी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री और जनकपुरी के विधायक आशीष सूद ने बताया कि उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। श्री सूद ने संबंधित अधिकारियों को सीसीटीवी जांच करने और समिति बनाने के निर्देश भी दिए हैं।
इसकी जांच के लिए मैंने वहां पर पुलिस को सीसीटीवी कैमरे खंगालने के लिए कहा है। साथ ही साथ जो चीफ इंजीनियर हैं उनको भी ये निर्देश दिया है कि तुरंत एक कमेटी बनाकर क्या सारे प्रोटोकॉल्स फॉर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वर्क एट ए पर्टिकुलर साइट, वहां पर काम करने के सारे मानक पूरे हुए थे या नहीं हुए थे, इसकी जांच करने का भी निर्देश दिया है।
दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि नागलोई जल शोधन संयंत्र में वार्षिक सफाई और मरम्मत कार्य के कारण आज और कल कई क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान नागलोई, पश्चिम विहार, मुंडका, उत्तम नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित होगी। जल बोर्ड ने स्थानीय लोगों को पहले से पानी भंडार करने के साथ साथ आपात स्थिति में बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि राजधानी में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या को लेकर फैलाया जा रहा दुष्प्रचार पैसे लेकर किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि कुछ तथ्यों की जांच के बाद उन्हें दुष्प्रचार फैलाने के कारणों का पता चला है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पैसों के लालच में दहशत फैलाने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी संजय त्यागी ने कहा था कि पिछले वर्षों की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों के मामले में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने शहरवासियों को आश्वासन दिया कि लापता व्यक्तियों, विशेष रूप से राजधानी में बच्चों के लापता होने को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 300 ग्राम से अधिक उच्च गुणवत्ता वाला मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए है। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त एसके जैन ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें साझा करने और अपशब्दों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। श्री जैन ने कहा कि यह अभियान सोशल मीडिया के माध्यम से भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है। दिल्ली सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बन गया है जिसने भारत टैक्सी के सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से औपचारिक साझेदारी की है। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम तथा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों और पर्यटकों को सुरक्षित, भरोसेमंद और पारदर्शी टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना तथा टैक्सी चालकों की आय और सम्मान को बढ़ाना है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह आज दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शामिल हुए और दिव्यांग खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। श्री सिंह ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और मेहनत से समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं तथा खेल उनके लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और मंच उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि वे राज्य और देश का नाम रोशन कर सकें। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार साल में एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार पैरा ओलंपिक में भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रयास कर रही है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान दिल्ली परिसर में भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों पर केंद्रित अध्ययन का संकलन पिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया 100 अरब डॉलर की साझेदारी के लिए आदर्श स्थितियां का विमोचन किया गया। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT और न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस संकलन में भारत और ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत कंपनियों की वास्तविक व्यावसायिक यात्राओं का संकलन है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए IIFT के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के लाभों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने केंद्रीय बजट 2025-26 को विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि ये बजट औपनिवेशिक मानसिकता से पूर्ण मुक्ति और नए भारत की सोच का प्रतीक है। कर्तव्यपथ और कर्तव्य भवन से प्रस्तुत ये पहला बजट ऐतिहासिक मील का पत्थर है। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सूद ने कहा कि बजट में दिल्ली के लिए सुरक्षा, शिक्षा, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
जो कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए दिल्ली के लिए एक बड़ा बजट प्रावधान किया गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। शासकीय योजना और दिल्ली मेट्रो के फोर्थ फेज के विस्तार के लिए 6,275 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15,380 करोड़ किया गया है। जो दिल्ली ये प्रोजेक्ट मेट्रो फेज 4 दिल्ली के लिए एक लाइफ लाइन साबित होने वाला है, जैसे अभी की मेट्रो साबित है।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में परिवहन व्यवस्था को एकीकृत करने के लिए दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी DUMTA के गठन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित कानून के माध्यम से मेट्रोबस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं को एकीकृत योजना ढांचे में लाया जाएगा। इस योजना से जाम और प्रदूषण कम करने, अंतिम मील कनेक्टिविटी सुधारने तथा सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ एक समर्पित दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक और संरचनात्मक सुधारों पर काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पूरे उत्साह और जोश के साथ चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले का आयोजन 31 जनवरी से 15 फरवरी तक किया जाएगा।
मेले में उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम राज्य हैं। ये राज्य अपनी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। मिस्र एक साझेदार देश के तौर पर मेले में हिस्सा ले रहा है, जिससे मेले को वैश्विक महक मिल रही है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पार्थ गुप्ता ने कहा कि सूरजकुंड मेले का फोकस कलाकारों की आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण पर आधारित है। श्री गुप्ता ने बताया कि ये मेला भारत और विदेश के कलाकारों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।
इस बार जो हमारा फोकस है वो लोकल टू ग्लोबल है। उसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारे देश से जो है कोने कोने से करीबन 20 प्रदेशों से हमारे शिल्पकार और क्राफ्ट पर्सन आए हुए हैं। यही अगर मैं ग्लोबल लेवल में बात करूँ तो करीबन 45-50 देशों से हमारे जो हस्तशिल्पकार हैं, आर्टिसन से, वो यहाँ पर आए हुए हैं।
मेले की व्यवस्था के बारे में श्री गुप्ता ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उचित साफ सफाई, व्हीलचेयर और एम्बुलेंस सेवा के लिए मेला परिसर में लगभग 100 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। मेले में भाग ले रहे देश के 20 राज्यों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारीगरों की कला और शिल्प की विभिन्न चीजों, लोक प्रदर्शनों और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनुभव आगंतुक कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में सुदृढ़ और निरंतर नीतिगत उपायों के कारण भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री वैष्णव ने बताया कि रेल मंत्रालय वर्तमान में कर्मचारियों की पेंशन सहित अपने समग्र परिचालन पर प्रतिवर्ष लगभग 2,74,000 करोड़ रूपये खर्च कर रहा है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह धुंध छाई रही, वहीं दिन के समय धूप खिली रही। अधिकतम तापमान आज 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से कहा, परीक्षा की अपनी तैयारी पर पूर्ण भरोसा रखें। शिक्षकों से प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की गति के प्रति संवेदनशील रहने को कहा। दिल्ली जल बोर्ड ने जनकपुरी घटना की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा, राजधानी में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या को लेकर फैलाया जा रहा दुष्प्रचार पैसे लेकर किया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिव्यांग खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और फरीदाबाद में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पूरे उत्साह और जोश के साथ जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।